संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के दान में वे वर्धमान महान जिंद चले हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्ष दे। जीवाजीवाधिकार से लेकर मोक्ष अधिकार तक की चर्चा हो गई है और सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है। सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में अपन ने कल ये बात देखी कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व के संबंध में उन्होंने एक बार फिर अपने विचार व्यक्त किए और ये कहा, 120वीं गाथा में अपन ने विचार किया था कि भगवान आत्मा आश्रय बंध मोक्ष किन्हीं का कर्ता और भोक्ता नहीं है, मात ज्ञाता ही है। जैसे कि हमारी दृष्टि माने आंख पर पदार्थों को देखती जानती ही है, उन्हें करती भोगती नहीं है। अग्नि को कर्ता कौन है कि ईंधन है, और भोगता कौन है कि लोहे का गोला। अग्नि को ईंधन उसका कर्ता है और लोहे का गोला उसे भोगता है, और आंख सर्व दूर से देखती है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा इन रागादि भावों का और पर पदार्थों का ना तो करता है ईंधन के समान और न भोगता है लोहे गोले के समान। सिर्फ जो कुछ भी होता है उसे जानता मात्र है। इतनी बात अपन कल हुई थी। अब अगले व्याख्यान में अपन को ये देखना है कि कुछ ऐसी मान्यता वाले जीव भी हैं। ये अभी तक बात क्या चल रही थी कि आत्मा कर्मों का कर्ता है या नहीं, तो कह रहे थे कर्ता नहीं है, भोगता नहीं है। अब उलट के बात है, उलट के क्या बात है प्रदीप जी, कि कर्म आत्मा के कर्ता हैं कि नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं, भारत में एक मत है सांख्य मत, जो ऐसा मानता है कि प्रकृति और पुरुष दो तत्व हैं, तो पुरुष तो बिल्कुल निष्क्रिय करता है और सब कुछ प्रकृति ही करती है। ऐसा एक मत है, और उसी मत के समान जैनियों में भी कुछ ऐसी मान्यता वाले लोग हैं कि वो क्या कहते हैं कि कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही भूख खान पान कराता है, जितने भी पुण्य पाप के कार्य होते हैं वो सब कर्म ही कराता है। एक गाथाएं हैं एकदम, देखो 332 गाथा से लेकर और 344 तक इतनी लंबी गाथाओं का ग्रुप है। सारी गाथाएं तो अपन नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसका भाव मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो कहता है कि कर्म ही निद्रा दसना बननी कर्म के उदय से नींद आती है, सोते हैं तो दसना बननी कर्म का क्षयोपशम हो जाए तो जाग जाते हैं। कहते हैं साता बेदनी कर्म का उदय हो तो लौकिक सुख होता है, असाता बेदनी कर्म का उदय हो तो दुख होता है, यहां तक कि स्त्री वेद का उदय हो तो पुरुष के साथ रमने की इच्छा होती है, पुरुष के साथ रमण होता है, पुरुष वेद की इच्छा उदय हो स्त्री वेद के साथ रमण होता है। माने आत्मा तो कुछ करता नहीं है, इसलिए सारे जो भी पुण्य पाप हमारे से होते हैं वो सब उनका कर्ता कर्म ही है। ये 332 से लेकर 344 तक गाथाओं में बहुत विस्तार से ये बात यहां कही है, और अंत में निष्कर्ष के रूप में अमृतचंद्राचार्य एक कलश लिखते हैं जिसमें सबका सार आ जाता है। उस कलश को अपन पढ़ते हैं, पेज नंबर 529 पर है। मां कर्तार ममीश प्रसन्तु पुरुषम सांख्याय वाप्यार्हता। Thank you. देखो बहुत मार्मिक छंद है, ये अपने घर में लगाने लायक है, पर आज के हमारे जितने विवाद हैं उनको भी समझाने वाला है। कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि सांख्या इवा अर्हता, सांख्य के समान हे अरहंत के भक्तों, अर्हत माने अरहंत के भगत, माने हैं अपने को कहते तो ये है कि हम अरहंत के भगत हैं, माने जैनी हैं, लेकिन उनकी मान्यता सांख्यों जैसी है। कैसी है कि हे अरहंत के भक्तों, सांख्य के समान अरहंत के भक्तों, तुम मां करतार ममी स्पृशंत, तुम पुरुष को सर्वथा अकर्ता मत मानो। सुधीर जी, हम तो समझ रहे थे कि इनने कहा था कि अगले कदम पे हम ये कहेंगे कि आत्मा पर को जानता भी नहीं है, लेकिन अगले कदम पे ये तो ये कह रहे हैं कि हमने कल कहा था कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र जानता है। तो अगले कदम में ये कह रहे हैं कि अकेला अकर्ता मत मानो, नहीं तो सांख जैसे हो जाए, हो जाओगे, कथनचित कर्ता मानो, ये तो उधर को गए भूल कला से। ये गाथाओं के ऊपर है इसका सार है। ये जो इतनी गाथाएं हैं ना, जो 332 से लेकर 344 तक, मैंने किस तरह हम लोगों में अज्ञान तनपता है वो बता रहा हूं मैं समय सार को पढ़ने वालों में। अगले स्टेप में कहां गए हैं पादनी जी, कि तुम सर्वथा अकर्ता मत मानो, नहीं तर सांख जैसे हो जाओगे। तो क्या माने कि अज्ञान अवस्था में तुम कथनचित कर्ता मानो और भेद ज्ञान हो जाने के बाद तुम उसे अकर्ता मानो। आत्मा कोई तुम्हें काल भेद करके, भेद विज्ञान का जब तक नहीं हुआ है, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, अज्ञान अवस्था में आत्मा को ही कर्ता मानो और ज्ञान अवस्था में आत्मा को ही अकर्ता मानो। मैं हिंदी पढ़ देता हूं, समझ नहीं जाएगा। यह अर्हत मत के अन्यायी अर्थात जैन भी आत्मा को सांख्य मतियों की भांति अकर्ता मत मानो, भेद ज्ञान होने के पूर्व उसे निरंतर कर्ता मानो और भेद ज्ञान होने के बाद उद्धत ज्ञान धाम में निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को कर्तृत्व से रहित अचल एक परम ज्ञाता ही देखो। ख्याल में ना, राग आदि भावों के बारे में ये कमेंट्स है, पर का कर्ता मानने की बात नहीं है। रागादि भावों का कर्ता अज्ञान अवस्था में ये आत्मा ही है, अज्ञान अवस्था में आत्मा नहीं है, और ज्ञान अवस्था में आत्मा उसका ज्ञाता दिखता है, ऐसा मानो। देखो भावार्थ लिखते हैं पंडित जयचंद जी छावड़ा, उसकी मैं पूरी पंक्तियों तो नहीं पढ़ता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो पढ़ता हूं, छठवीं सातवीं लाइन से। इसलिए आचार्य देव उपदेश देते हैं कि सांख्य मतियों की भांति जैन आत्मा को सर्वथा अकर्ता न माने, जब तक स्वपर का भेद विज्ञान न हो तब तक तो उसे रागादि का माने अपने चेतन रूप भाव कर्मों का कर्ता मानो, और भेद विज्ञान होने के बाद शुद्ध विज्ञान घन समस्त कर्तृत्व के भाव से रहित एक ज्ञाता ही मानो। किसका किसका? रागादि का, अपनी बात नहीं है ये, भाव कर्मों का लगाना, भाव कर्मों का यानी ये भाव कर्मों का ज्ञाता मानो और कर्ता भी मानो अज्ञान अवस्था में। और ये बात कोई अभी छिपी नहीं है कि वह हमारी निगाह में नहीं आई। बनारसी दास ने गंगे की चोट लिखा, ज्ञान भाव ज्ञानी करें अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे यूं निश्चय परवान। क्यों ये जो अज्ञान अवस्था में कर्ता मानने की बात कही है, तो वो कर्ता मानने की बात ये जो कथन है ये निश्चय नय का कथन है कि व्यवहार नय का है? रागादि का कर्ता जो आत्मा है ये कौन से नय का कथन है? सोचो, मैंने दोहा बोल दिया ना, क्यों निश्चय परवान, ये निश्चय नय का कथन है, ये व्यवहार नय का कथन नहीं है। व्यवहार नय से तो पर का करता है व्यवहार नय से। तो अब क्या करें, रागादि भाव का कर्ता आत्मा को निश्चय नय से कर्ता मानो अज्ञान अवस्था में, और ज्ञान अवस्था में अकर्ता मानो, वो भी निश्चय नय के। ये दोनों ही कथन निश्चय नय के हैं, ये दोनों में से एक भी कथन व्यवहार नय का नहीं है। और प्रमाण से तो कहें कथनचित कर्ता और कथनचित अकर्ता। तो ये तो भिन्न काल में घटित हुआ, क्यों अन्ना जी? ये तो भिन्न काल में घटित हुआ, जब वो अज्ञान अवस्था थी तब तो हमने अज्ञान अवस्था में कर्ता माना था, और फिर ज्ञान अवस्था में उसका हमने अकर्ता माना, ज्ञाता माना। हम तुमको जानते ही नहीं, इंकार की बात तो है ही नहीं। तो एक समय में दोनों नए लगना चाहिए ना, वो शर्त यहां पूरी नहीं हो रही है। तो एक समय का क्या करें? देखो, वास्तव में जो अज्ञान अवस्था में कर्ता मानो है, ये तो अज्ञान भाव का, और अज्ञान भाव तो मिथ्यात्व सहित जो राग द्वेष होते हैं उनको बोलते हैं। तो ज्ञानी के तो मिथ्यात्व सहित राग द्वेष है ही नहीं, इसलिए ज्ञानी को उनका कर्ता मानने का सवाल ही कहां है। अपने कहते ज्ञानी अज्ञान भावों का कर्ता नहीं है कि साहब ये तो अच्छी बात नहीं है, क्यों? तो है उसके हो रहे तो क्यों नहीं है? कि हो ही नहीं रहे, क्योंकि अज्ञान भाव मिथ्यात्व सहित रागादि अज्ञान भाव के खाते में जाते हैं। मिथ्यात्व के बिना जो रागादि होते हैं, अप्रत्याखाना वर्ण प्रत्याखाना वर्ण कसार के उदय में, वो अज्ञान भाव के खाते में नहीं जाते, ये समझ लेना। अब एक समस्या खड़ी है कि वे रागादि जो चौथे गुण स्थान में होते हैं तायत्रमुख के उदय में, उनका कर्ता कौन है? क्योंकि अभी तो अज्ञान अवस्था में तो अज्ञानी को कह दिया था, अब तो ज्ञान अवस्था में वे रागादि हो रहे, और ज्ञान अवस्था में उन रागादि को अज्ञानी को तो कह नहीं सकता, क्योंकि वो अज्ञानी तो है नहीं, और दूसरा आत्मा तो करेगा नहीं। अर्नी जी, है इसका कोई जवाब? तो प्रयत्न सार उसका जवाब देता है कि कर्ता नय से आत्मा उसका कर्ता है, तो अकर्ता नय से आत्मा उसका कर्ता नहीं है। ये दोनों नये एक समय में लगते हैं, तो ज्ञान भाव अज्ञानी भाव वाले तो आगे पीछे हो गए, ठीक है ना? सोचना गंभीरता से, किसी को कोई विकल्प हो तो बाद में कभी पूछना। अन्ना जी, आपके तो ख्याल में आ रही ना बात। अभी सवाल वो अज्ञानमय रागादि का जहां निषेध होता है ना, हम वो भेद तो कर नहीं पाते हैं, तो इस कार्य के उदय होने वाले रागादि पर भी वो ही नियम लागू कर देते हैं। अरे तारतमुए वाले रागादि तो ज्ञानी के हैं ही नहीं, और इसी आधार पर कहते ज्ञानी के रागादि है ही नहीं। जो कहा जाता रागादि से रहे तो परमाणु मात्र भी राग विद्यमान हो तो सर्वागम का धारी हो तो भी वो सम्य दृष्टि नहीं। ये जो बात है वो परमाणु मात्र राग माने वो राग, तारतमुए के राग को राग कहते ही नहीं, इसलिए वो अपेक्षाएं नहीं लगती। अब ये है तो प्रथम सार में कर्ता न से उसी समय वो ज्ञानी आत्मा उस रागादि का कर्ता है, कौन से नियम से? या परिणमति सा कर्ता, क्योंकि वो रागादि रूप भगवान आत्मा स्वयं ही कर्ता रूप परिणमित हुआ है। यदि ऐसा नहीं माने तो गुरुदेव ने बहुत लिखा इस पर, ऐसा नहीं माने तो परद्रव को मानना पड़ेगा, तो वो तो महा अब सिद्धांत का प्रचार होगा। तो जो रागादि रूप परिणमित हुआ वो करता है कर्ता नय से, और उसी समय उसमें एकत्व बुद्धि नहीं है, वो कर्ता बनता नहीं है, इसलिए वो उसी समय अकर्ता नहीं से उनका कर्ता नहीं है और मात्र ज्ञाता है। जानने का अभी भी निषेध नहीं कर रहे तो प्रवचन सार की बात हुई। देखो भैया, चाहे प्रवचन सार में लिखी हो चाहे समय सार में, यदि नए लगा के लिखी है तो वो बिल्कुल सत्य बात है, उसी नए के अनुसार ही बात है। समय सार में विवाह नए से लिखा हो तो सत्य हो जाएगी, प्रवचन सार में निश्चय नए से भी लिखा हो तो झूठी हो जाएगी। क्यों? लेकिन समय सार के हिसाब से भी, समय सार की खुद गाथा में लिखा है कि अशुद्ध निश्चय नए से भगवान आत्मा रागादि का कर्ता है, ये समय सार में भी लिखा है। तो इसलिए हे जैनियो, तुम सांख्यों के समान भगवान आत्मा को रागादि का सर्वथा अकर्ता मत मानो। ये गलत है। देखो अब आगे की बात है। एक एक पॉइंट में बहुत विषय वस्तु है और लिमिटेड समय में उसका कहना बहुत कठिन है। फिर वो उन्होंने कहा कि करता है कि नहीं है, कि उससे भिन्न है कि अभिन्न है रागादिक से, तो वो अंत में एक सजेशन देते हैं। 209वां कलश पेज नंबर 537, जिनके पास किताब है वो खोल लें। कर तुम वेद तुष्ट तृप्ति बस तो दो पिबा इस कलश का अर्थ करने के पहले अपने एक बात और समझ लें तो कलश को समझने में सुविधा रहेगी। तो एक तो वो सांख्यों का पक्ष था और उसके विरुद्ध एक बौद्धों का पक्ष है, वो कर्ता और भोक्ता के मामले में है। बौद्ध क्या कहते हैं, इन्हें कर्ता तो माना ना कथनचित रागादिक का अज्ञान अवस्था में, तो बौद्ध कहते हैं कि कर्ता तो है लेकिन वो भोगता नहीं है, जो करता है वो भोगता नहीं है। अपना जैन सिद्धांत ऐसा कहता है ना, जो करता है सो भोगता है, करे सो भोग है। सारा जगत ही ऐसा कहता है कि नहीं कहता है? अरे जैनियों की मान्यता क्या है करे और भोगे के मामले में, एक मिनट बाद पहले बौद्धों की समझें। बौद्ध क्या कहता है बोलो, कि जो करता है वो भोगता नहीं है। क्यों? क्योंकि बौद्ध क्षणिक बाद को मानता है, तो जिसने किया वो तो उसी वक्त खत्म हो गया, अब भोगे कैसे? तो समंत भद्राचार्य ने देवागम स्तोत्र में एक श्लोक लिखा कि हे बौद्ध, तुम्हारे यहां तो ऐसा होगा कि न हिनस्ति अनभिसंधात्री, ऐसी कारिका है। उसका अर्थ है कि जिसने हिंसा का विचार किया उसने हिंसा नहीं की, जिसने हिंसा की वो बंधन को प्राप्त नहीं हुआ और जो आत्मा बंधा वो मुक्त नहीं हुआ। बद्धम चित्तम न मुंचते, बंधा हुआ क्योंकि बंधने वाला तो उसी वक्त मर गया, छूटा कैसे? तो छूटा कौन? तो उसके अगला जो बंधा नहीं था वो छूटा, पागल हो गया। क्योंकि हर वस्तु एक एक क्षण में नष्ट होती है ना, इसलिए जो करता है वो भोगता नहीं है। तो कोई जैनी ऐसे हैं वो जो कहते हैं करता है वो भोगता नहीं है, वो जैनी कौन से हैं? कि अभी मैंने कहा था ना कि यदि हम अज्ञान अवस्था में रागादिक का कर्ता आत्मा को नहीं मानते हैं और ज्ञान अवस्था में भी जो चातुर्मोह संबंधी रागादिक हैं उनका कर्ता आत्मा को नहीं मानते हैं, तो हम कहते हैं कि जैन के हिसाब से भोगता भी नहीं होगा, तो वो भोग क्यों रहा है, तो संसार में क्यों है वो रागादिक को भोग क्यों रहा है? तो भोगता नहीं होना चाहिए, क्यों? करता नहीं है तो भोगता नहीं होना चाहिए। बुद्ध तो ये कहता है करता है भोगता नहीं है, लेकिन जैनी तो ऐसा मानते नहीं। तो हमने कहा था कि यदि तुम उसको कर्ता नहीं मानोगे तो पर को कर्ता मानना पड़ेगा, और पर को कर्ता मानोगे तो महाअनर्थ होगा। तो इसलिए वो अपन आगे बढ़ते हैं कि पर्याय का कर्ता पर्याय है। अब आए समझ प्रदीप जी, ये आता कि नहीं आता? ये बौद्ध जैसे जैनी है, एकांत से माने तो, कथनचित माने तो नहीं है। वो सर्वथा कर्ता मानने वाले सांख्यों जैसे हैं, और जो पर्याय का कर्ता पर्याय पर्याय तो वो पर्याय तो एक समय की है ना, तो जो जिस पर्याय ने किया वो तो अगले समय नष्ट हो जाएगी, और फिर जो भोगेगी वो तो अगली पर्याय भोगेगी। तो वही हो गया ना, बौद्ध जैसा संकट खड़ा हो जाएगा कि नहीं? थोड़ा स्थूल करता हूं, कितनों की समझ में आएगा वो नहीं आएगा भगवान जाने। सुनो, कि एक आदमी ने मनुष्य गति में नरकायु का बंध किया, तो नरकायु बांधने की क्रिया का कर्ता कौन है? पर्याय की दृष्टि से मनुष्य, और अब उसे भोगेगा कौन? क्योंकि जब वो उदय में आएगी उसके पहले वो मनुष्य मर चुका होगा, तो भोगेगा कौन? नार की। तो करे मूछ वाला वो पकड़ा जाए गाड़ी वाला, किया मनुष्य ने वो भोगा नार की ने। यदि एक आत्मा उनमें कंटिन्यूटी में है, ऐसा नहीं माना जाए कि जिसने यहां कर्म बांधे थे किए थे उसी ने भोगे, यदि अंदर से वो भूल जाए और पर्याय का कर्ता पर्याय को रखें और द्रव्य की उपेक्षा करें, तो वास्तव में पर्याय का कर्ता पर्याय भाषा सही नहीं है। तो भाषा क्या है? पर्यायार्थिक नय से वो द्रव्य करता है, पर्यायार्थिक नय से, ऐसी बात है। और द्रव्यार्थिक नय से वो करता है, और पर्यायार्थिक नय से वो ही करता है, ये भाषा। और पर्याय करता है और द्रव्य करता नहीं है, ऐसे दो अलग अलग करके भाषा है, वो एकदम गलत है। और है कहीं तो समझ लेना वो इस अर्थ में है। तो करे वो मूछ वाला पड़ेगा डाली वाला हो गया ना, वही वही बद्धम चित्तम न मुंचते हो गया ना, जिसने नरकायु बांधी उसने नरकायु भोगी नहीं, जिसने देवायु बांधी उसने देवायु भोगी नहीं, तो ये भी नहीं बैठता है। तो क्या मानो? तो इसमें लिखा है, पीछे पढ़ोगे आप, कि तुम कथनचित कर्ता और कथनचित अकर्ता और कथनचित भोगता और कथनचित अभोगता मानो। क्या ये सर्वथा? या तो तुम सांख हो जाओगे या बौद्ध हो जाओगे। तो इसलिए तुम कथनचित मानो, ये सब इसमें लिखा है। फिर अंत में एक कला से जो अपन ने अभी पढ़ा, और इसका अर्थ क्या है? देखो, वो कहते हैं कि भैया कौन करता है कौन भोगता है, काय को माथा मारते हो? तुम तो उस एक आत्मा का ध्यान क्यों नहीं करते? लेकिन ये समझ कर और फिर विकल्पों को तोड़कर आत्मा के ध्यान करने की प्रेरणा का कलश है जी। लेकिन ये समझे बिना हम पहले ही आत्मा का ध्यान कर लेंगे, कुछ भी होगा, ये बांधता होगा वो बांधता होगा, पर्याय करते होगी द्रव्य करते होगी, हमें क्या, ऐसा नहीं चलेगा। देखो इसका अर्थ पढ़ता हूं, कर्ता और भोक्ता का युक्ति के बस से भेद हो या अभेद, युक्ति के बस से माने अपेक्षा से, चाहे वो कर्ता और भोक्ता वो ही है, जो कर्ता से भोक्ता हो ऐसा हो, और जो कर्ता से भोक्ता नहीं चाहे ऐसा हो, ये चाहे भेद हो चाहे अभेद, क्या कहते हैं, वो कर्ता है से भोक्ता है इसका नाम अभेद, और जो कर्ता है वो भोक्ता नहीं है इसका नाम भेद, अथवा कर्ता और भोक्ता दोनों न हो, माने जिसने किया ना उसने भोगा, न जिसने भोगा ना उसने किया, वस्तु का तुम इससे तुम्हें क्या, तुम वस्तु का ही अनुभव करो, ये कह रहे। अब इस विकल्प में ज्यादा क्यों लेते हो? ये निर्णय हो गया ना, कथनचित कर्ता कथनचित भोक्ता, समझे ना? अब तुम वस्तु का ही अनुभव करो, अब ये कर्ता भोक्ता के विकल्पों से विराम लो। जैसे चतुर पुरुषों के द्वारा डोरे में परोई गई मणियों की माला भेदी जा सकती है, उसी प्रकार आत्मा में प्ररी गई चैतन्य रूप चिंतामणि की माला भी कभी किसी से भेदी नहीं जा सकती। ऐसी यह आत्मा रूपी माला एक ही हमें संपूर्णतः प्रकाशमान हो, अर्थात नित्यत्व नित्यत्व आदि के विकल्प छूटकर हमें एक आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हो। ऐसा सम्यक निर्णय कर लिया और फिर विकल्पों को तोड़कर आत्मा के अनुभव में तुम जाओ, ऐसा आचार्य उपदेश देते हैं। अब देखो, इसके बाद मैंने बोला ना कि इसमें बहुत मर्म की बातें हैं, इसलिए एक एक बात को लंबा नहीं सकता हूं मैं। सेड़िया की गाथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं इसकी। अब वो ज्ञाता गेय का चक्कर आता है, वो क्या कह रहे हैं कि इस दीवाल पर अपन कलई पोतते हैं ना, तो दीवाल जुदी है और कलई जुदी है। अब वो कहते हैं कलई सफेद है, ध्यान से सुनना, और कलई ने दीवाल को सफेद कर दिया, तो दीवाल पर पोती गई कलई से दीवाल सफेद हो गई क्या? क्यों? वो कलई जब बोरे में रखी थी तब भी सफेद थी, और दीवाल पे पुत गई तब वो कलई ही सफेद है। दीवाल तो जैसी है अभी भी वैसी ही है। उस कलई के पीछे निगाह डाल के देखो, क्यों दीवाल सफेद हो गई क्या? बोलो ज्ञान सिंह जी, क्या कह रहे? अपन कह सारा दुनिया अज्ञानी जगत कहेगा कि दीवाल सफेद हो गई, लेकिन दीवाल काय का नाम है? दीवाल तो उस कलई की जो परत है उसके पीछे है, उसका नाम है। जब कलई नहीं पोती थी जब वो जो थी उसका नाम दीवार है, तो कलई ने तो दीवार में प्रवेश ही नहीं किया। क्यों? सफेद चदरा ओढ़ लेने से अन्ना जी सफेद हो जाएंगे? क्योंकि अन्ना जी अंदर अलग है और चदरा सफेद अलग है ऊपर। तो ऐसे ही दीवाल ने सफेद कलई का चदरा ओढ़ लिया है। तो वो कह रहे हैं कि अभी भी कलई तो सफेद कलई ही है, दीवाल सफेद नहीं हुई। जो सफेदी है वो कलई की ही है, और अभी भी कलई में ही है, उसने दीवार में नहीं है। दीवार तो जैसी है जैसी है। अब ऐसे ज्ञान का घटित करते हैं वो, ज्ञान ने गेय को जाना। यहां कहा था ना बार बार कि कर्ता नहीं है, भोगता नहीं है, मात्र ज्ञाता है, मात्र ज्ञाता है, मात्र ज्ञाता है। अब वो ज्ञाता कैसा है उसकी मीमांसा कर रहा है, कैसा क्रमिक विकास है, सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में कितना क्रमिक विकास है। कि ज्ञाता ने गेय को जाना, तो जब ज्ञान ने गेय को नहीं जाना था पर्टिकुलर गेय को, तब भी वो ज्ञान था, और जब उसने किसी गेय को जाना तब भी वो ज्ञान है। जैसी वो कलई जब बोरे में थी तब भी वो कलई थी, और जब वो दीवाल पे पुत गई तब भी वो कलई है, दीवाल थोड़ी हो गई। समझ में ना? डूबे गए ए दीवाल, ए दीवाल सफेद दीवाल, सफेद कलई कोई नहीं कहता वो जगत, ये मूर्ख जगत है। क्या कहता है वो? सफेद दीवाल, जबकि वो सफेद कलई है, दीवाल नहीं है सफेद। वो कलई जब बोरे में थी तब भी कलई थी सफेद थी, और दीवार पे कूद गई तब भी वो सफेद। माने कलई ने अपने सफेदी स्वभाव को नहीं छोड़ा, दीवार पे कूद जाने से वो दीवार सफेद हो गई और कलई खत्म हो गई, खत्म हो गया। क्यों? ऐसे ही ज्ञान ने जब गेय को जाना तो ज्ञान गेय हो गया, गेय का हो गया। ये कहां से लाए? दीवाल पे पुतते ही कलई दीवाल की हो गई। कलई तो किसकी थी? जब बोरे में थी तब भी कलई कलई की थी, और दीवार पे पुत गई तब भी कलई कलई की है, वो दीवार की नहीं हुई। ऐसे ही ज्ञान ने गेय को जाना तब भी ज्ञान ज्ञान का है, गेय का नहीं हुआ, और जब नहीं जाना था तब भी ज्ञान ज्ञान का ही था, गेय का नहीं हुआ था। ये एक कह रहे कि जानने से वो गेय का कैसे हो गया, और इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। एक कलश है इसमें बहुत अच्छा, भूमि न हो तो चांदनी की जो क्यों नहीं धनी गे का ज्ञानी, जो वो ऐसा कलश है ना, वो हिंदी का भजन, वो मूल कलश में वो बात है। इस कलश में ये बात लिखी है तो जैसे चांदनी चंद्रमा की जमीन पे पड़ी, तो वो चांदनी जमीन चंद्रमा की हो गई। कलश 217 निकालो भाई, देखो 216 का भावार्थ, तो कलश में ही होगा ना। देखो, शुद्ध नय की दृष्टि से तत्व का स्वरूप विचार करने पर अन्य द्रव्य की सूक्ष्मता का स्वभाव है, कहीं ज्ञान उन्हें स्पर्श नहीं करता अथवा वे ज्ञान को स्पर्श नहीं करते, ऐसा होने पर भी ज्ञान में अन्य द्रव्यों का प्रतिभास देखकर यह लोग ऐसा मानते हुए कि ज्ञान स्वरूप से चित होते हैं कि ज्ञान को परग्रहों के साथ परमार्थ संबंध है, यह उनका अज्ञान है। उन पर करुणा करके आचार्य देव कहते हैं कि यह लोग तत्व से क्यों चित हो रहे हैं। वो तो अलग है, मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये भी बहुत मार्मिक है। और ये मालूम कि 215 का 16 पढ़ेंगे बाद में, 215 का देखिए सबसे ऊपर 560 पेज पर सबसे ऊपर की पंक्ति संस्कृत में, ज्ञानम गेय मवेति यत्तु तदयम शुद्ध स्वभावोदया। क्या कहते हैं, ज्ञान ने गेय को जाना। प्रदीप जी, तो ये तो ज्ञान का शुद्ध स्वभाव का उदय है, ये कोई गलती नहीं है। चलो पीछे से पढ़ो इस कलश को, शुद्ध द्रव्य निरूपणार्पितमे तत्त्वं समुत्पन्नस्यतो नैकं द्रव्यगतं च कास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातु चित् ज्ञानं गेयमवेति। ज्ञानम गेय मवेति, ज्ञान गेय को जानता है, ये तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। देखो, पर को जानने से विकृत थोड़ी ज्ञान हो गया, ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। मुझे आश्चर्य होता है कि ये सारा जगत पर को जानने मात्र से आकुलित क्यों होते हैं, इस बात का मुझे बहुत दुख है। क्या लगा, देखो, ज्ञान गेय को जानता है, यह तो यह ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। जबकि ऐसा है तो फिर लोग ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से आकुल बुद्धि वाले होते हुए तत्व से च्युत क्यों होते हैं, कि मैं जानूंगा तो छू लूंगा तो हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, भंगी को छू लेने से मैं गड़बड़ हो जाऊंगा, ऐसा ज्ञान उसको जान लेने से ज्ञान गड़बड़ नहीं होता। थोड़ा भंगी की बात, भ्रष्टा को लो ना, मल को लो, मल को छू लेने से तुम अपवित्र हो जाओगे ना, ऐसे जान लेने से अपवित्र नहीं होते हो। और उन्हें ये लगता है कि मैंने जाना तो जैसे छूने से अपवित्रता होती है वैसी अपवित्रता हो जाएगी। तो छूना क्या है, जानना नहीं, ये मैं हूं ऐसा मानने का नाम छूना है, ये मेरे हैं ऐसा मानने का नाम छूना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई विकृति ज्ञान में होने वाली नहीं है, वो तो शुद्ध स्वभाव का उदय है। और वो जो आपने बताया 216 गाथा का, वो अर्थ मैं पढ़ता हूं। देखो, 16 कलश, 17वां कलश पढ़ते हैं, 16वें कलश में ज्योत्स्ना रूपम, तीसरा पंक्ति, कृष्ण प्रति भुवम नैव तस्यास्ति भूमि ज्ञानम गेयम कलयति सदा गेयमस्यास्ति नैवम। के ज्योत्स्ना रूपम स्नपति भुवम, सारी दुनिया को चंद्रमा चांदनी से नहा देता है, स्नपति माने नहा देता है, तो तस्यास्ति भूमि, लेकिन वो जमीन चंद्रमा की नहीं हो जाती है। ऐसे ही ज्ञानम गेयम कलयति, ज्ञान गेय को जानता है, इससे ज्ञान ज्ञान का नहीं हो जाता। कितने जानने मात्र से उसे अपना माने तो वो अपराध है, उसका दंड उसे मिलेगा। अपना जाने तो दंड मिलेगा, जानने से दंड नहीं मिलेगा, ये लिखा है। उसी का वो हिंदी अनुवाद है, भूमि न हो तो चांदनी की ज्यों, क्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। के भूमि न हो तो चांदनी की, जैसे तैसे ही गे का धनी नहीं होता है, कौन ज्ञानी, गे को जानने वाला गे का मालिक नहीं हो जाता है। दहन दहत पर गगन न तदगत, गगन दहन ताकी विधि हानि। दहन माने ईंधन, दहत माने जलता है अथवा अग्नि जलती है, पर तदगत गगन न दहत, वही आकाश द्रव्य है के नहीं है। जहां अग्नि जलती आपके चूल्हे में, वहां आकाश द्रव्य है के नहीं है, वो क्यों नहीं जलता है? दहन दहत ईंधन का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव जलने का है, इसलिए वो जलती है। और गगन क्यों नहीं जलता है? क्योंकि उसका स्वभाव जलने का नहीं है। तो जलना और नहीं जलना अपने स्वभाव के आधार पर रहा कि अग्नि के आधार पर रहा, बोलो? अग्नि ने ईंधन को जलाया, इस बात में कहां दम रही? तो ईंधन अपने जलने के स्वभाव से जला, और आकाश अपने नहीं जलने के स्वभाव से नहीं जला। तो ज्ञान ने गेय को जाना, तो ज्ञान गेय का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने स्वभाव से नहीं हुआ, क्योंकि उसे परका होने का, जानने का स्वभाव तो है, लेकिन अपना बनाने का स्वभाव नहीं है। लेकिन मिथ्या मान्यता ज्ञानी की ये है कि जो अपना मनाएगा वो उसकी हो जाएगी, उसका दंड उसे प्राप्त होगा। ये तो उसके स्वभाव का उदय है, ऐसा बोलते हैं बोलो। ये ज्ञान का कोई दोष नहीं है। तो दोष क्या है ज्ञान का? ये तो उसका स्वभाव है, और ये स्वभाव क्षेत्रम ज्ञान में स्वभाव का उदय है। सहायक ज्ञान में तो पूर्ण स्वभाव का उदय है, सारा लोकालोक झलके, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। सिद्ध दशा में तो पूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया। यदि पर का जानना उसका बिल्कुल स्वभाव नहीं होता, पारिणामिक भाव है भाई साहब, वो तो छायिक भाव क्यों नहीं है? छायिक भाव तो केवल ज्ञान है। सबको जानना जो स्वभाव मन सर्वज्ञत्व शक्ति है, वो तो पारिणामिक भाव है। वो किसी कर्म के उदय से नहीं है, वो किसी कर्म के क्षेत्र से नहीं है, किसी कर्म के क्षय से नहीं हुआ। स्व और पर को जानने का जो स्वभाव है, वो उसकी स्वयं की संपत्ति है। और जब भी बाध का असंभव, बाधक कारण का अभाव हो गया, तो पूरा प्रकट हो गया। इसलिए कहते हैं कि तुम कर्ता मत मानो, और सांख्य के समान अकर्ता भी मत मानो, और बौद्ध के समान कर्ता और भोक्ता में अंतर भी मत मानो। ये सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार का दिशा है ना, बारीक जी। तो फिर ध्यान, मैं अभी भी समझ रहा हूं कि 1% लोगों की समझ में आया होगा जो क्या भेद है, फिर कहता हूं। इसलिए सांख्य के समान सर्वथा अकर्ता मत मानो, बौद्ध के समान कर्ता और भोक्ता में भेद मत मानो। ये है दूसरा पॉइंट, कि सांख्य तो सर्वथा अकर्ता मानता है नित्यवादी होने से, और बौद्ध क्षणिकवादी होने से जो करे सो भोगे नहीं, करे कोई भोगे कोई, इसे उसको कर्ता और भोक्ता को अलग नहीं मानो। तो क्या मानो? कि कथनचित जो करे सो भोगे, और कथनचित जो करे वो ना भोगे, दूसरा वो उसमें भी, क्योंकि वो पर्याय की अपेक्षा जो पर्याय करती है वो भोगती नहीं है, और जो भोगती है वो करती नहीं है, है ना? देखो ऐसा लोक में कहा जाता है कि अपराध करती है जवान, गालियां बकती है कि नहीं, और पिटाई होती है माथे की, जबान नहीं पिटती है। क्यों? तो करे कोई और भोगे कोई, ये हो गया। क्योंकि जबान अलग है और माथा अलग है। अब इसमें ये भी लगाओ तो बिस्की वा जवान है, उसी के माथे में तो जूते पड़े हैं। तो इसी का जो करे सो भोगे, ये भी हो गया, और करे कोई और भोगे कोई, ये भी हो गया। ये जैन दर्शन की अपेक्षा है। इसलिए सर्वथा ऐसा मत मानो कि जो करता है सो भोगता है, और ऐसा भी मत मानो कि करता और भोगता और। जिस जीव ने किया उसी ने भोगा, और किया मनुष्य ने और भोगा, होता तो ये भी है किया हमारे बाप दादों ने और भोगा हमने, ऐसा भी होता कि नहीं होता है? लोक में कहा जाता है वस्तु के स्वरूप में तो दो द्रव्यों के बीच में ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन लोक में तो कहता है ना कि बाप दादों की खा रहे हैं और बाप दादों की भोग रहे हैं, बाप दादों की संपत्ति है तो वो खा रहे हैं, होता कि नहीं होता? लेकिन वास्तव में तो वस्तु के स्वरूप में ऐसा है नहीं। अब यह सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है। अब कहते जानने के मामले में, कि जानने के मामले में बहुत स्पष्ट शब्दों में है कि कलई कलई की है, दीवाल की कलई नहीं है, और कलई सफेद है, और दीवाल पर जो सफेदी दिखती है वो कलई की है, दीवाल की नहीं है। तो गे में जो ज्ञान दिखता है वो ज्ञान का है, गे का नहीं है। गे का ज्ञान भी ज्ञान का ज्ञान है, गे का नहीं। बस ये झगड़ा है कि गे जानने में नहीं आते, ज्ञान ही जानने में आता है। जो ये जो भाषा है वो इस बात की है कि जो तुम्हें दीवाल सफेद दिख रही है, दिख रही दीवाल सफेद, लेकिन वो सफेदी कलई की है, दीवाल की नहीं। तो आखिर वो उन्होंने कहा कलई कलई किसकी है? कलई कलई की है। तो शिष्य कहता गजब हो गया, तो कलई के अलावा वो दूसरी कलई ऐसी कौन सी है कि जिसकी ये कलई है? क्योंकि उसे अभेद सस्वामी संबंध समझ में नहीं आता है, उसे भेद वाला सस्वामी संबंध समझ में आता है। जो अपन कहें कि ये पत्नी किसकी पत्नी है? फला की पत्नी है, पति की पत्नी है। तो नहीं, पत्नी पत्नी की है और पति पति का है, तो पत्नी के अलावा दूसरी कौन सी पत्नी है जिसकी पत्नी ये है? ये इसमें लिखा है, कृष्ण है। देखो क्या उस कलई के अलावा दूसरी कलई कौन है, ऐसा इसने प्रश्न किया है। देखो देखो पेज नंबर 551। कलई की ही कलई है। देखो कलई दीवार आदि की नहीं है तो कलई किसकी है? सबसे ऊपर हिंदी में कलई दीवार आदि की नहीं है तो कलई किसकी है? तो कलई की ही कलई है। इस कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है कि जिसकी यह कलई है? इस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किंतु वे दो स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। एक अंश को हमने स्वामी कहा और एक अंश को उसमें स्व कहा, वो दो अलग नहीं है, जो अंश ही है। यहां स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? वो कहते अपने ही में कि मैं ही मालिक और मैं ही मुनीम, ऐसा भेद करने से क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर कलई किसी की नहीं है, कलई किसी की नहीं है, कलई कलई ही है, यह निश्चय है। तो कलई की कलई है, एक की काय को लगाते हो, पर ऐसा बोलो कलई तो कलई है, ऐसे व्यवहार से क्या साथ दे? जब दो है ही नहीं, जब कहना है जो आप अपनी दुकान में आप दे कहे ना कि भाई मैं अपनी दुकान करता हूं कि साहब वो मैं माल ले जाता हूं और आप मुनीम जी को भेज देना, मैं पैसा दे दूंगा, कि हमारे कोई मुनीम नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि चपरासी को भेज देना, तो हमारे कोई चपरासी नहीं है, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब मैं ही मुनीम हूं और मैं ही चपरासी हूं, तो सेठ जी कि मैं ही सेठ हूं। तो कहते ऐसा ऐसा भेद करने से फायदा क्या है? कि कुछ नहीं समझ लो, मैं तो मैं हूं बस समझ लो, चाहे मुझे सेठ समझ लो चाहे मुनीम समझ लो चाहे। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि काम तो तीन है ना, एक सेठाई का काम, एक मुनिनी का काम और एक दुकान साफ करने का नाम काम, और तीनों काम मैं करता हूं, इसलिए मैं ही मुनि हूं, मैं ही चपरासी हूं, मैं ही सेठ हूं। क्यों? जिस स्कूल में एक मास्टर हो तो उसमें हेड मास्टर होगा कि नहीं होगा? ये मेरी तो भोगी हुई बात है। मैं अशोकनगर में था, पाठशाला में पढ़ा था, अकेले ही था, तो मैं अपने को प्रधान अध्यापक लिखता था, सील बनवाई थी, तो पाते थे परीक्षा बोर्ड की कापियां मापियां, तो सील प्रधान अध्यापक की। तो लोग प्रधान अध्यापक तो जब होंगे 10-5 अध्यापक हों, तब तुम उनके प्रधान कहलाओ, तब अकेले ही हो तो प्रधान कैसे हो? मैंने कहा तुम मूर्ख नंबर एक हो, समझते नहीं हो। तो क्यों नहीं समझते हैं? प्रधान अध्यापक का क्या काम है बोलो? प्रधान अध्यापक का क्या काम है? केंद्राध्यक्ष का क्या काम है? माने जो सारा काम प्रधान अध्यापक का होता है ना, स्कूल समय पर खुला के नहीं, समय पर बंद हुआ के नहीं, कल छुट्टी होगी के नहीं, इसका डिसीजन लगे, इसका ऑर्डर निकाले, क्यों कोई का जवाब आए, इंस्पेक्टर आवे, पूछने का, जो भी, ये सारे काम प्रधान अध्यापक के हैं कि नहीं? तो वो हमारे पाठशाला में वो काम नहीं है क्या? और वो जो काम करे वो प्रधान अध्यापक, मेरे अंदर में अध्यापक हो तो वो प्रधान अध्यापक की परिभाषा तुम लाए कहां से? यदि एक होगा तो प्रधान ही होगा, अब दो होंगे तो एक सहायक और एक प्रधान होगा, दूसरे सहायक होंगे, ख्याल में आए ना? ऐसा नहीं है कोई नहीं है तो प्रधान एक नहीं है, लेकिन एक कहें कि भाई साहब इसमें प्रधान और प्रधान का भेद करने से क्या फायदा, अच्छा नहीं लगता है अकेले और प्रधान अध्यापक कहना, तो ये ठीक है, लेकिन जब तक मेरी वो सील नहीं जाएगी तो केंद्र अध्यक्ष मानेगा नहीं, क्योंकि उसके बोर्ड में नियमावली में लिखा है। तब स्कूल के प्रधानाध्यापक केंद्राध्यक्ष रहेंगे। बोलो मैं क्या करूं? मैं तुमसे थोड़ी बताता हूं प्रधानाध्यापक हूं, लेकिन जब परीक्षा बोर्ड की कापियां जब मैं भेजता हूं तो मुझे वहां प्रधानाध्यापक की सील लगानी पड़ती है, नहीं मेरा केंद्र ही कैंसिल हो जाए। क्या समझ में आया कि नहीं? तो प्रधान तो ऐसे ही कहते, ऐसे भेद से क्या फायदा? तो भेद है ना, वो संपत्ति भी है मेरा ज्ञान, और वो स्वामी, उस संपत्ति का स्वामी भी वही ज्ञान है, तो वो कोई नकली नहीं है, लेकिन ऐसे भेद के विकल्प से क्या प्रयोजन है? इसलिए कलई कलई की है, ऐसा नहीं कहके कलई कलई है ऐसा बोलो, ऐसे ज्ञान का ज्ञान है ऐसा बोलने से क्या लाभ है? कहां कहां बात थी? ज्ञान ज्ञान का है कि गेय का प्रदीप भी, ये समस्या थी। गेय को ज्ञान ने जाना, अब समस्या है कि इसका नाम क्या रखें? तो मैंने समय सार को जाना, तो मुझे समय सार का ज्ञान है, समय सार का ज्ञान है ऐसा कहूं कि मेरे को ज्ञान का ज्ञान है ऐसा कहूं? बोलो। तो अब वो कहते हैं कहना तो यही पड़ेगा कि मेरे को समय सार का ज्ञान है। क्यों कहना पड़ेगा ये? क्योंकि अनंत के अलग अलग होते हैं ना, मैं हरेक को ज्ञान का ज्ञान कहूंगा तो ये कैसे पता चलेगा कि इस ज्ञान का ज्ञेय कौन पदार्थ बना? तो ये बता, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वो पुस्तक का ज्ञान, समय सार का ज्ञान, गोमट सार का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान ऐसा बोला जाता है। इसलिए ये व्यवहार सर्वथा झूठा नहीं है, इस प्रयोजन की सिद्धि करने वाला है, लेकिन वो ज्ञान कभी ज्ञेय का होता नहीं, इसलिए वो असत्यार्थ है, समझना। तो किसका है ज्ञान? क्या ज्ञान का ज्ञान है? तो इससे क्या प्रयोजन की सिद्धि हुई? इससे यह प्रयोजन सिद्धि हुई कि कोई ज्ञेय का ज्ञान कहने से सचमुच ज्ञेय का ज्ञान न मान ले, ये बात उसके ख्याल में रहे कि ज्ञेय को तो उसने जाना है, ज्ञान तो ज्ञान का ही है, ज्ञेय का नहीं, कि यह प्रयोजन की सिद्धि हुई। तो फिर ऐसा बोले कि ज्ञान का ज्ञान है, तो कहते उसने ऐसा कौन सा ज्ञान है कि जिस ज्ञान का यह ज्ञान है? अब समझिए ना, तो कोई दूसरा नहीं है, एक ही में सत्स्वामी संबंध है। वो कहते ऐसे व्यर्थ के विकल्प से क्या लाभ है? कि कोई लाभ नहीं है। तो ऐसा क्यों बोलते हो ज्ञान का ज्ञान है? तो फिर ऐसा बोलो कि ज्ञान ज्ञान है, इसलिए प्रदीप जी या तो ये बोला जाएगा कि ज्ञेय का ज्ञान है, या ये बोला जाएगा कि ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का ज्ञान तो बोलने ही नहीं है, ये तो बीच में समझाने के लिए छोटा सा स्टेप है, समझा मैंने। थोड़ा तो बहुत कठिन हो गया, वो तो सब इतने दिनों से सरल चल रहा था, वैसा क्यों नहीं हुआ? तो अब तो अंत में आ गए ना समय सार के, फिर मेरे से 24वां है ना, क्या एक हो जाएगा। तो अब तो वो अभी तक माल नहीं आएगा तो मैं कब के लिए बचा के रखूं, समझ में आया ना? तो क्या हुआ, ज्ञेय का ज्ञान है क्या ज्ञान का ज्ञान है, बोलो। वो ज्ञेय तो उसमें जाना गया, इतने मात्र से ज्ञेय का ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान ने ज्ञेय में प्रवेश नहीं किया और ज्ञेय ने ज्ञान में प्रवेश नहीं किया। ज्ञान ज्ञान में रहा और ज्ञेय ज्ञेय में रहा, समझे ना? बिल्कुल एक दूसरे के पास गए तक नहीं। गजब की बात तो ऐसी है कि आत्मा अलोकाकाश में तो नहीं जाता ना, और अलोकाकाश का ज्ञान होता क्या नहीं? तो यदि ज्ञान ज्ञान को ज्ञेय के पास जाकर ज्ञान होता होता तो अलोकाकाश का ज्ञान सर्वज्ञ को भी नहीं होता। या तो अलोकाकाश को अलोकाकाश के भीतर आना पड़ता, और या ज्ञान आत्मा को अलोकाकाश में जाना पड़ता। इसलिए इसमें कोई संबंध ही नहीं है, बिल्कुल दूर दूर रहते हैं, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब ज्ञेय का क्यों कहते हैं? तो वो तो बहुत बड़े प्रयोजन की सिद्धि है, क्योंकि अभिन्न विभिन्न ज्ञेय हैं। तो इस वक्त इस ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय कौन बना? इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ज्ञेय का कहते हैं। इसकी वजह से कोई ये मान ले कि ज्ञान ज्ञेयों का हो गया तो वो मूर्ख है, और ऐसी मूर्खता न हो इसके लिए हम कहते हैं कि ज्ञेय का ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान का है। तो ज्ञान का क्या ज्ञान? कि तो अपने ही अपने अंदर में है। क्या अपने इस जेब में से निकाले 500 रुपया और इस जेब में रख लिए कि मैंने दिए, तो कहते हैं इससे क्या फायदा है दिए लिए की बात करने से, बस अपना पैसा अपने पास रहे, ऐसे ही बोलो ना। जब ज्ञान ही का ज्ञान है तो क्या बोलना, क्या लगा दे तो फिर क्या बोले? तो कहते ज्ञान ज्ञान है और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे भेद के विकल्प से क्या, ऐसा निषेध किया। इसमें कहां जानने का निषेध है? ये वस्तु का स्वरूप है, ये सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार का सार है। देखो अंतिम बात कहता हूं, उनमें से लगा शब्द ये नहीं कहते हैं कि तू मुझे जान, रस ये नहीं कहता है कि तू मुझे चख, रूप ये नहीं कहता है कि तू मुझे देख, और क्या लिखा कि ज्ञान भी रूप के पास जाकर उसे नहीं चखता है, देखता है। ऐसी गाथाएं लेन की लेन लग रही 10-20 गाथाओं की, कि ये पदार्थ ये नहीं कहते हैं कि तू मुझे जान, और ज्ञान भी उनके पास जाकर उनको नहीं जानता है, माने दोनों बिल्कुल निरपेक्ष हैं, है ना? क्या शब्द ये नहीं कहते हैं कि तू मुझे जान, रूप ये नहीं कहता कि तू मुझे जान, रस ये नहीं कहता तू मुझे चख, और ज्ञान भी उनके पास जाकर चखने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या है कि कोई जाने तो जाने, चखे तो चखे, नहीं चखे तो नहीं चखे, वो बिल्कुल निरपेक्ष है। कौन? ये। और ज्ञान भी जानने में आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, वो एकदम निरपेक्ष है। ये निरपेक्षता ज्ञान का स्वभाव है। और जब उसमें अपेक्षा लगी कि देखो क्या है क्या है क्या है, जो अकुलता हुई वो ज्ञान का दोष है। ज्ञान में निषेध उस दोष का है, जानने का निषेध नहीं है। तो क्या है कि सहज भाव से जो जानना हो पर्यागत योग्यता से वो हो जाए, और नहीं हो तो नहीं हो, ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का संदेश है। थोड़ी एक आध दो बातें और हैं सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की, और उसके बाद में अमृतचंद्राचार्य ने आत्मघाती टीका में उपाय उपेय अधिकार लिखा है, साध्य साधक भाव अधिकार लिखा है, तो उनकी चर्चा तो विस्तार से करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो समय सार का अंश नहीं है, आत्मख्याति का अंश है। फिर भी उसमें जो 47 शक्तियां और इनकी जो विशिष्ट चर्चा है, थोड़ी बहुत चर्चा उनकी भी अपेक्षित है, तो ये सारी चर्चा कल।
आगे तो बताए दिन वाली।